സർവായരിയാണം നമോ ലൂയി സർവജ്ജായാണം നമോ ലൂയി സർവത്രികാലവർത്തി സാഹൂണം സ്വരൂപ സംജാവിനാ പാമ്യോ ദുഃഖയനന്തേ പദ ശ്രീ സദ്ഗുരു ഭഗവൻ
ഗുരുചരണ जो सवैया टीका आपको बताई थी उसका ये पद है, इसका भी हम अगला चरण के रूप में यहाँ पढ़ रहे हैं, अर्थ नहीं करेंगे।
गुण एक एक जाके पर जय अनंत करे, पर जय में अनंत नृत्य नाना विस्तरियो है, नृत्य में अनंत थट थट में अनंत कला, कला में अखंडित अनंत रूप धरियो है, रूप में अनंत सत सत्ता में अनंत भाव, भाव को लखावहु अनंत रस भरियो है, रस के स्वभाव में प्रभाव है अनंत दीप, सहज योनंत यो अनंत रवि करियो है, सहज अनंत यो अनंत लगी करियो है।
देखिए इसका अर्थ जो दीपचंद जी शाह ने किया है वो ये अर्थ है, एक एक गुण अनंत पर्याय करता है। रजनी भाई देखना, इसमें जो विशेषता है द्रवगुण पर्याय से और थोड़ी एक्स्ट्रा विशेषता, एक एक गुण अनंत पर्याय करता है, एक एक पर्याय में अनंत नृत्य विविध रूप से फैले हैं, एक एक नृत्य में अनंत घाट हैं, एक एक घाट में अनंत कलाएं हैं, एक एक कला में अखंडित अनंत रूप विद्यमान है, एक एक रूप में अनंत सत्ताएं हैं, एक एक सत्ता में अनंत भाव हैं, एक एक भाव को देखें तो वह अनंत रस से परिपूर्ण है, एक एक रस के स्वभाव में अनंत प्रभाव हैं। दीपचंद कवि कहते हैं कि इस प्रकार अनंत का विस्तार सहज रूप से अनंत विशेषताओं से संपन्न किया है। रमणीक भाई इसमें 10 पॉइंट है, 10 जैसे द्रवगुण पर्याय 3 है ना, इसमें 10 है। कौन कौन से 10 हैं? पहला है गुण, आत्मा में गुण है, गुणों की पर्याय, पर्यायों के नृत्य, नृत्यों के घाट, घाट में कलाएं, कला में रूप, रूप में सत्ताएं, सत्ताओं में भाव, भाव में रस, रस में प्रभाव। ये ऐसे 10 है, इसको मैंने आप क्या विस्तार करोगे इसका। इन्होंने मैंने इसमें दिया है, इसमें मेरे पास में है, ये लगभग 6 पृष्ठों में इसकी टीका लिखी है खुद दीपचंद जी ने। ये 6 पृष्ठों में इसकी लगभग टीका लिखी है खुद दीपचंद जी ने, और ये टीका भी मेरे पास है, आप चाहें तो इसमें इसका अभ्यास करने के लिए, चिंतन करने के लिए कि वस्तु स्वरूप जो है वो कितना विशाल है, विशाल है। ये तो समझाने के लिए 3 भेद किए हैं द्रवगुण पर्याय, समझाने के लिए 4 भेद किए हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, समझाने के लिए 2 भेद किए हैं द्रव्य पर्याय। लेकिन यदि विस्तार से भेद करने जाएं तो उसके विस्तार में 47 शक्तियां भी निकलेंगी, और उसके विस्तार में संख्यात भेद भी निकलेंगे, और विस्तार में असंख्यात भेद निकलेंगे, और विस्तार करेंगे केवल ज्ञान की अपेक्षा अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत प्रकार भेद निकलेंगे चीज के लिए तो बंदे तो 10 बताए। ऐसे जो है सहज अनंत यो अनंत लगी करियो है, उन्होंने आखिरी में ऐसी लाइन दी है कि ऐसा जो वस्तु का स्वभाव है सहजता के साथ में अनंतता से शुरू हुआ है, अनंत गुण से शुरू हुआ, अनंतता से शुरू हुआ और अनंत लगी करियो है और अनंत पे जाकर के खत्म होता है, अनंत पे जाके भी खत्म नहीं होता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप का विस्तार है और इसकी विस्तार से चर्चा फिर कभी समय मिलने पर करेंगे। अभी अपन इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं और जो अपना 47 शक्तियों का विषय है उस 47 शक्तियों के विषय को अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। अपन ने कल 8 शक्तियों पर चर्चा करी थी, उसमें 2 शक्तियों की चर्चा थोड़ी संक्षेप में रह गई थी, प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति, उसकी थोड़ी सी बात करके फिर अपन आगे की शक्तियों पर चलते हैं। ये जो शक्तियां हैं इन सब शक्तियों को आचार्य देव ने एक ज्ञान मात्र भाव में अंतर्गत किया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, अनंत शक्तियां उछलती हैं। कोई मेरे से कह रहा था रमणीक भाई कि आप ये जो शक्तियों का व्याख्यान करते हो ये उछल उछल के क्यों करते हो? तो वो आत्मा में जब ये शक्तियां उछल रही हैं तो मैं क्या करूं? मैं थोड़ी उछलता हूँ, वो शक्तियां पावर भरती हैं, वो उछालती हैं, आत्मा को उछाल रही है, मैं तो क्या चीज
हूँ?
ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो। ये आत्मा की जो शक्तियां हैं ये ऐसी उछलती हैं, माने आचार्य ने खुद ये शब्द डाला, अमृत चंद्राचार्य ने मूल में संस्कृत में ये शब्द है कि आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। गुरुदेव श्री इसका ऐसा अर्थ करते हैं उछलने का कि वो जो है प्रकट है, वो शक्तियां जो है वो ऐसी सुप्त नहीं पड़ी है, व्यक्त है और ज्ञानियों को व्यक्त होती है। सम्यक की प्राप्ति होती है तो उसका एक अंश में सारी अनंत शक्तियां उसको प्रकट होती हैं और ये अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ में आत्मा में भरी है। देखना आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, ज्ञान नाम की शक्ति है, उसके ऊपर आचार्य का वो नहीं होता है, संतोष नहीं हो रहा है आचार्य, बोले ज्ञान शक्ति तो सिर्फ जानने का काम करती है। आत्मा में एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, जानने की शक्ति नहीं, सबको जानने की शक्ति। मैंने ये 2 शक्तियां हो गई अलग अलग, एक जानने की शक्ति ज्ञान शक्ति है चौथी, फिर सबको जानने की शक्ति ये सर्वज्ञत्व शक्ति है। इसके अलावा और 2 शक्तियां हैं जो ये शुरू की 12 शक्तियां हैं, इन 12 शक्तियों में तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो उसमें आप स्पष्ट समझ सकते हो, आगे की शक्तियों में आपको ज्ञान का स्वरूप भली समझ में आए नहीं आए, लेकिन जो 12 शक्तियों में तो बहुत आराम से समझ सकते हो आप। कैसे समझ सकते हो? देखो जीवत्व है, बोलो ज्ञान मात्र भाव से ही तो जीवत्व है ना, चितिपना है, चेतनपना है, चैतन्य है, अजड़त्वपना है, वो ज्ञान से ही तो अजड़त्वपना है ना। दृशी शक्ति है, दृशी शक्ति, वो दृशी शक्ति भी जो है ये ज्ञान दर्शन के 2 भेद करते हैं तो दृशी शक्ति आती है, यदि इसका अभेद करें ज्ञान दर्शन का तो वो जो चेतना है, इसलिए दृशी शक्ति भी जो है वो एक ज्ञान का ही रूप है, आत्मा की चिति शक्ति का ही एक रूप है, ऐसा इसका अर्थ किया जा सकता है। फिर इसके बाद में जो सुख शक्ति है, वो सुख शक्ति देखो ज्ञान शक्ति बीच में बैठी है रजनी भाई, ज्ञान शक्ति बीच में बैठी है, उसके पहले कौन सी शक्ति है? दृष्टि। उसके बाद में कौन सी शक्ति है? सुख। क्या हुआ इसका कि ज्ञान का कारण दर्शन, दर्शन उपयोग पहले होता है तो कारण हो गया, ज्ञान का कारण दर्शन और ज्ञान का कार्य सुख, ऐसे बीच में बैठी क्या बोला, क्या बोला बेटा? मैंने दर्शन शक्ति पहले, उसके बाद ध्यान, उसके बाद सुख, ये तीन शक्तियों का जोड़ा हो गया ना। दर्शन शक्ति कारण है ज्ञान को, ज्ञान शक्ति कारण है सुख को। फिर इसके बाद में जो वीर शक्ति है, वो वीर शक्ति का तो रूप ऐसा माना गया है कि जो आत्मा में अनंत ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, अनंत होता, अनंत ज्ञान होता है, सर्वज्ञता होती है, तो वो सर्वज्ञता के लिए आत्मा में वीर चाहिए। यदि आत्मा में इतना वीर नहीं है, अनंत वीर नहीं है, तो वो जो हमारी आत्मा है वो अनंत ज्ञान को समझेगी कैसे? उसमें अनंत पावर चाहिए, अनंत वीर चाहिए। स्वरूप की रचना करने वाली है वीर शक्ति, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति। तो वो वीर शक्ति जो है, वो जो अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ, अनंत केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, अनंत दर्शन हुआ, अनंत सुख, बोलो वीर शक्ति का काम सुख के लिए क्या जरूरत है? भाई हमको, भाई साहब बहुत सुख है, अब इसमें वीर शक्ति का क्या काम है? ज्यादा सुख आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो यदि वीर शक्ति ना हो। इसीलिए रजनी भाई, इसलिए ज्यादा दुख हो जाए आदमी को तो हार्ट फेल हो जाता है, और 10 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए, गया काम से। क्यों गया? वीर शक्ति नहीं थी उसके पास में। मैंने ये एक उदाहरण है, उदाहरण लौकिक उदाहरण है, लेकिन ये वीर शक्ति जो है वो अनंत गुणों को संभाल करके रखती है। वो वीर शक्ति से अनंत गुण उत्पन्न हुए हैं, वीर का काम उत्पन्न करने का है ना, तो ये अनंत गुण उत्पन्न हुए हैं वीर शक्ति के कारण। और वीर शक्ति में इतनी दम है, इतनी दम है कि वो अनंत गुणों को पैदा कर सकती है, तो वो अनंत गुणों को संभाल भी सकती है। बोलो, हमारे बच्चे होते हैं तो हमारे में सिर्फ बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को जिंदगी ता जिंदगी, बेटा तू कुछ कर मत भले, लेकिन तेरे को मैं बैठे बैठे खिलाऊंगा, मेरे में आज भी इतनी वो बच्चे को शर्म आती है तब तक के, इसलिए थोड़ा काम पर चला जाता है लेकिन बाप ये कह रहा है, माँ ये कह रही है कि बेटा तू कभी भी आ जा, तेरे खिलाने लायक तो मेरे पास में हमेशा रहेगा। पिता कह रहा है कि तू कभी भी आ जाए, तेरे खर्च के लायक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अनंत गुणों को ये वीर शक्ति ऐसा संभाल करके रखी है, चोट नहीं लगने देती है। माँ की गोदी में बेटा होता है तो कितनी चोट लग जाए, पहले वो यदि घायल होगी तो माँ घायल होगी, बच्चे को आंच नहीं आ पाए। यदि माँ पहले चले जाए तो बच्चे का कुछ हो सकता है। एक बार हमारे नागपुर में एक एक्सीडेंट हुआ, भाई साहब कार थी, कार कोई ट्रक में, मारुति है, उसका नाम ही मारुति है, तो वो जो है वो ट्रक के अंदर घुस गई, ट्रक के अंदर घुस गई तो उसमें साहब 6 लोग थे, अच्छे बढ़िया जवान स्त्री पुरुष सब, और उसमें एक छोटा बच्चा था 1 साल का, अकेला बच्चा बचा, बाकी सब चले, अकेला बच्चा बचा। मैंने वो उसकी माँ की गोद में था, माँ की गोद में था तो माँ ने उसको इतना संभाल के रखा अंत तक कि मैं मर जाऊं तो, ये अपने आप हुआ था ना भाई साहब उसका, हाँ दिलीप बोलो, एक छोटा बच्चा 1 साल का वो बच गया। शिविर के समय की बात देखिए, तो ये वीर शक्ति जो है उसको संभाल के रख, उसका पालन पोषण, हर गुण का, हर शक्ति का पालन पोषण करने वाली ये वीर शक्ति है। वीर शक्ति के बाद में प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति आत्मा की कही गई। ये प्रभुत्व शक्ति ये कहती है कि तुमने मेरे ऊपर लालन पोषण की जिम्मेदारी दी, मुझे लालन पोषण की जिम्मेदारी दी तो मेरे को कुछ अधिकार भी तो दो। यदि मेरे पास में अधिकार नहीं होंगे तो मैं ये अधिकार तुमको प्रधानमंत्री बनाया जाता है देश का, और अधिकार अधिकार कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे को, क्या करोगे आप? ये रखो अपना प्रधानमंत्री पद अपने घर में रखो, अधिकार तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो वीर शक्ति पूरा संभालने को तैयार है, लेकिन मेरे को एक प्रभुत्व की, प्रभु की छत्र छाया चाहिए, मुझे प्रभुत्व के अधिकार चाहिए। प्रभुत्व शक्ति अधिकार की सूचक है। प्रभुत्व शक्ति की व्याख्या क्या है? प्रभुत्व शक्ति की व्याख्या की है अखंडित प्रताप युक्त, अखंडित प्रताप युक्त स्वातंत्र शालित्व लक्षणा। ये भी लक्षणा शक्ति है। लक्षणा शक्ति बताई थी, कितनी बताई थी? 8 लक्षणा शक्ति। ये जो है ये शायद तीसरी या चौथी है लक्षणा शक्ति। ये प्रभुत्व शक्ति भी लक्षणा शक्ति है, माने ये लक्षण है जीव का, द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य कोने कहेवा है, वो वाली भाषा में है, बेंसरी का वचनामृत में ना बोल, द्रव्य कोने कहेवा है। क्या है? जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना हो। ये मैंने हिंदी कर दी। जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना हो, ये स्वातंत्र शालित्व लक्षणा। किसी दूसरे की जरूरत ना हो, अखंडित प्रताप युक्त, बस मैं ही काफी हूं। क्या बोला? और किसी की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूं। केवल ज्ञान, तेरे को केवल ज्ञान करना। कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चल रहा है, इसमें दूसरों की मदद लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सबकी मदद लेके चलो। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान, ऐसे ऐसे केवल ज्ञान अनंत आ जाए तो मेरे को दूसरे की जरूरत नहीं होगी। अनंत केवल ज्ञान आ जाए तो दूसरे की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसा तो शास्त्र में लिखा है भाई साहब। ये लोकालोक को जानने वाला होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से पूछा, केवल ज्ञान से, आत्मा से नहीं। अभी तो केवल ज्ञान, हमारे बेटे से निपट लो आप पहले, बाद में हमारे पास आना। केवल ज्ञान से पूछा कि यदि ये लोक दो चार हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं। और अनंत हो जाए तो हो जाओ, तो तुम अकेले जान लोगे उसको, नो प्रॉब्लम। क्यों? ये अखंडित प्रताप युक्त स्वातंत्र शालित्व लक्षणा, ये प्रभुत्व शक्ति है। तो ये बताओ कि तुमने मुझे इस विश्व का राजा तो बना दिया, इस आत्मा का प्रभुत्व शक्ति है ना, प्रभु राजा बन गई आत्मा का, तुमने मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन मेरा प्रभाव क्षेत्र क्या होगा? मेरा प्रभाव क्षेत्र क्या होगा? बोले पूरा लोकालोक, बाह्य में, बाह्य में पूरा लोकालोक, और अंदर में आत्मा के अनंत गुण, उनकी अनंत सामर्थ्य, उसके अनंत शक्तियां, उसकी अनंत स्वभाव, उसके अनंत धर्म, उसकी अनंत पर्याय, उसके अनंत विभागी प्रतिच्छेद, उसके असंख्यात प्रदेश, ये सारा का सारा तेरा प्रभाव क्षेत्र है। कहां कहां तुझे साम्राज्य करना है, कोई एक प्रदेश बाकी नहीं है जिसमें तुझे साम्राज्य नहीं करना है। ये कौन सी शक्ति कह रही है? ये विभुत्व शक्ति कह रही है। विभुत्व शक्ति कह रही है कि सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा, सर्व भावों में व्यापक, सर्व भावों में व्यापक, आत्मा की निश्चय से आत्मा के अनंत गुणों में व्यापक, और व्यवहार से पूरे लोकालोक में व्यापक, त्रिकालवर्ती पर्यायों में व्यापक। ये विभुत्व शक्ति, इसके दो रूप मैं आपको बताना चाह रहा हूं। गुरुदेव ने ये जो अपना आत्मा के अनंत गुणों वाला व्यापकता है उसको उसकी मुख्यता से वर्णन किया, लेकिन इसमें अभी जो दूसरी नौवीं और दसवीं शक्ति है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसको आप सारे लोकालोक में भी व्यापक करो, उसकी त्रिकालवर्ती पर्यायों में व्यापक करो, क्योंकि ये सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व इसमें से निकलने वाली है, इसमें से ये विभुत शक्ति में से निकलने वाले हैं, इसलिए वो लोकालोक व्यवहार में पूरे लोकालोक के ज्ञापक। बोलो कितना बड़ा क्षेत्र है आत्मा को, आत्मा का तो जाने दो साहब, पहले अपन अकेले ज्ञान की बात कर लेंगे, ज्ञान की बात जाने दो बाबू भाई, एक अकेले केवल ज्ञान से निपट लो, एक केवल ज्ञान की बात करो, ये केवल ज्ञान का कितना व्यापक क्षेत्र है। एक समय की पर्याय तो उसका काल है, लेकिन उसका क्षेत्र व्यापकता कितनी है, पूरा लोकालोक ऐसे अनंत लोक हो तो उसकी व्यापकता को आंच नहीं आती है। त्रिकालवर्ती पर्याय, त्रिकालवर्ती पर्याय में क्या होता है, हमको तो पूछ लेते हैं कोई कि भैया बताओ केवल ज्ञान का विषय तत्वार सूत्र के अनुसार बताओ, तो हम कह देते हैं कि सर्वद्रव्य पर्याय शु केवल से, ऐसा हमने तो कितनी इंच की जवान है, 2.5 इंच की जवान, और पूछा केवल ज्ञान का क्षेत्र बताओ, तो 2.5 इंच की जवान चला दी हमने जरा सी, सर्वद्रव्य पर्याय शु केवल से याद करके आए ना घर से रट के, सर्वद्रव्य पर्याय शु केवल से का क्या मतलब होता है मालूम, सर्वद्रव्य पर्याय शु केवल से का मतलब है अमेरिका आ गया इसमें, वो जो है ना आपके भाई साहब वो संधि हस्ताक्षर किया था ओरिगन महाराज, वो आ गए इसमें, टेबल आ गया, चिंता नहीं करना। क्या बोल रहे, देखना जो भूतकाल में जो हो चुके जितने 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 वो सब पर्याय एक एक समयवर्ती सूक्ष्म पर्याय, माने हम जो है ना एक पिछले भाव में आप कौन थे, हम जो भी थे देव पर्याय से आए अपन तो अच्छे से, लेकिन देव थे तो देव की एक पर्याय नहीं, वो देव में हम सागरों पर्यंत रहे तो वो सागरों पर्यंत की प्रति समयवर्ती कितनी पर्याय, बोलो कितनी पर्याय होंगी, ना असंख्यात। नियम तो नियम है ना साहब। एक अंतर्मूर्त में असंख्यात पर्याय और वर्षों में सागरों में असंख्यात पर्याय, अनंत नहीं होती, अनंत नहीं होती, अनंत के लिए तो त्रिकाल चाहिए, भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्यकाल की अनंत पर्याय, भूतकाल से अनंत गुना भविष्यकाल, चिंता की बात नहीं, अभी तक हम जितनी जितना ये द्रव्य जो है हमारा आत्मा अभी तक जितना जिंदा रहा है ना साहब, जितना अभी तक जिंदा रहा है भविष्य काल में, इससे अनंत गुना भविष्य काल है वो जिंदा रहेगा, चिंता की बात नहीं है, उसके बाद भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इसका, क्यों, क्योंकि वो भविष्य काल का अंत आएगा नहीं, भविष्य काल का अंत आएगा नहीं, अनंत भूतकाल का अंत नहीं है, भूतकाल का भी अंत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भविष्य काल को भूतकाल से अनंत गुना कहा, संभावना है ना, ये संभावना में है, भूतकाल तो बीत चुका, सच्चा अनंत माना गया भूतकाल को, सच्चा अनंत माना गया, भविष्य काल का अक्षय अनंत है, भूतकाल समाप्त हो गया ना, अभी तो समाप्त हुआ, ये जो हमारी वर्तमान की पर्याय जैसे ही आई ना भूतकाल, ये इसके पहले का भूतकाल सब समाप्त हो गया, अभी खत्म हुआ अभी। और भविष्यकाल अनंत काल रहेगा, वो कभी खत्म, अक्षय अनंत, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत का फर्क है भूतकाल में और भविष्यकाल में। क्या बोले, ये जो विभुत शक्ति है, एक बात बताओ, बोले साहब वो आत्मा के अनंत गुणों में ही रहने दो ना इसको, इसका विभुत्वपना ज्यादा और क्यों लंबा करते हो, इतना ज्यादा ड्यूटी ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी, इसको इतने ही रहने दो ना, अरे इसमें कुछ नहीं कर रही है ये कुछ नहीं कर रही है, ये कोई परद्रव्य में जाकर के छेड़छाड़ नहीं कर रही है, ये प्योर ज्ञानात्मक है, ये विभुत्व शक्ति है लेकिन प्योर ज्ञानात्मक है, वो आपके घर में आएगी लेकिन मात्र जानेगी, टच नहीं करेगी अनंत द्रव्यों को, ये जो हमारा ज्ञान स्वभाव है वो लोकालोक के अनंत द्रव्यों को जानता है लेकिन एक द्रव्य को भी टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। तीसरी गाथा, स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही विभुत्व शक्ति निश्चय दृष्टि से तो वो अपने आत्मा के अनंत गुणों में व्यापक है, उससे बाहर जा नहीं सकती निश्चय से। लेकिन जैसे ज्ञान का व्यवहारिक रूप में केवल ज्ञान को सर्वद्रव्य पर्याय कहा है, ऐसे ये विभुत्व शक्ति भी सर्व भाव व्यापक। लेकिन क्या क्या जोरदार परिभाषा है भाई साहब, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा। सारे भावों में व्यापक हो रही है लेकिन खुद खुद एक भाव स्वरूप है। क्या विचित्रता है उसका, क्या अनेकांत है। खुद अनेक भावों में जाती है लेकिन खुद भी अपने एक भाव रूपत्व को छोड़ती नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहें तो एक गुण का रूप अनंत गुणों में जाता है लेकिन एक गुण का स्वरूप उसके अलावा दूसरे किसी गुण में नहीं है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण है वो निर्गुण होते, दूसरे रूप जा रहा है उसका, अनंत में चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, अनंत में चले जाओ, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो जो उसका अपना स्वरूप है उसका कभी कोई उसमें व्यवच्छेद नहीं होता है। ऐसा ये विभुत्व शक्ति की थोड़ी सी बात करिए अपन ने। इसके बाद में ये जो विभुत्व शक्ति है ये कैसे काम करती है। कैसे काम करती है बोले दो रूपों में काम करती है। कौन से दो रूपों में काम करती है, एक तो है सर्वदर्शित्व और दूसरा है सर्वज्ञत्व। बोले साहब कुछ बंटवारा हो गया क्या, बोले हाँ बंटवारा हो गया। बोले क्या बंटवारा हुआ, देखो अब पढ़ो, विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शन मई सर्वदर्शित्व शक्ति। बोलो एक बार सज्जन, इसके साथ में दूसरी भी पढ़ना ही, विश्व विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञान मई सर्वज्ञत्व शक्ति। ये दोनों शक्तियों की चर्चा एक साथ करते हैं अपन। क्या फर्क है दोनों में, और क्या फर्क है दोनों में, दो फर्क है, दो फर्क है। आपको फिर से मैं बताता हूँ, सर्वदर्शित्व शक्ति विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शन मई सर्वदर्शित्व शक्ति, तीन फर्क है। और इसमें है विश्व विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञान मई सर्वज्ञत्व शक्ति, तीन फर्क है। बोलो कौन कौन सी, एक तो है सामान्य और विशेष का फर्क, दूसरा दर्शन और ज्ञान का फर्क, तीसरा दर्शी और ज्ञान। उसमें सर्वदर्शी है, इसमें सर्व क्या है, इसलिए मैंने इसमें जो है ना जो संधि विग्रह किया है तो इसमें सर्वज्ञ को भी तोड़ दिया है। सर्व शब्द अलग है और ज्ञत्व अलग है। विश्व विश्व सामान्य विशेष ये सर्वज्ञत्व का है, विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शन मई सर्वदर्शित्व शक्ति। ये दो शक्तियों की, चेतन भाई आपसे एक प्रश्न, ये दो शक्तियों की सबसे बढ़िया ब्यूटी क्या है।
आत्मज्ञान मई,
क्या बात है, क्या बात है, इसलिए आपसे पूछा मैंने।
जवाब तो आपसे ही मिल सकता है,
मैंने पूछने का कारण भी यही था ना। मैंने सर्वदर्शित्व शक्ति माने क्या, संधि विग्रह करो, व्युत्पत्ति निकालो, व्याख्या करो, शाब्दिक व्याख्या करो, तो सर्वदर्शित्व का कोई माइका लाली अर्थ करके बता दीजिए। क्या सर्वदर्शी माने आत्मदर्शी,
सन्निदर्शन।
सर्वज्ञ माने क्या? सर्वज्ञ माने आत्मज्ञ। बोलो, कोई शब्द से अर्थ निकलेगा, कोई व्युत्पत्ति से ही अर्थ निकलेगा, कोई व्याख्या से ही अर्थ निकलेगा। भाई सर्वज्ञ की व्याख्या आप करो तो यही तो कहना, सर्व माने सब और ज्ञ माने जानने वाला, तो सबको जानने वाला उसका नाम सर्वज्ञ है। बोलो साहब, सर्वज्ञ माने आत्मज्ञ क्यों है? कोई जवाब ना बोलो, ऐसा नहीं है पहले बात का नहीं है। सर्वज्ञ माने एक 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 भाई बहन को एक बार ही उत्तर देने को मिलेगा। कुछ ना कुछ तो अपने को रोक लगानी पड़ेगी ना। सर्वज्ञ माने आत्मज्ञ क्यों है, इसका बहुत प्रॉपर जवाब, प्रॉपर, ये अच्छा जवाब है, ये वाला जवाब बहुत अच्छा है, ये वाला जवाब बहुत अच्छा है। और कोई जवाब? क्या जवाब दिया इन्होंने? इन्होंने ये जवाब दिया कि जो सबको जानता है वो एक को जानता है। ये प्रवचन सार में 49-50 नंबर की गाथा है, सर्वम जानती एकम जानती। और मेरे को एक कोई श्वेतांबर साधु मिले थे, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी कौन सा वो ग्रंथ है ना, पहला आचारांग, आचारांग में ये सूत्र उसमें भी मिलता है, सर्वम जान सर्वम। हाँ बोलो बोलो, हाँ यही तो बोल रहा हूँ मैं भी, एक फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले ये है क्या पहले वो बाद में है, इससे फर्क नहीं। लेकिन उसमें भी ये आचारांग सूत्र में भी ये पद है, अपने प्रवचन सार में तो है ही, है ही। देखना इसका अर्थ जो है उसको एक आध्यात्मिक व्याख्या से यदि इसका अर्थ किया जाए कि सबको जानने वाला माने सर्वज्ञ, उसका अर्थ आत्मज्ञ होता है। इसका एक आध्यात्मिक व्याख्या से अर्थ करें हम यदि, ये भी एक व्याख्या है, लेकिन एक और दूसरी व्याख्या हम ऐसी कर सकते हैं कि मेरे लिए तो भाई साहब, मेरे लिए तो सब माने मैं, क्या मेरे लिए तो सब माने बस मैं, जो एक होता है ना, एक एक माने सब होता है। कैसे एक माने सब होता है? क्या बोला? एक माने सब, मेरा इकलौता बेटा है। अरे साहब आप क्या बोल रहे हो, एक माने सब मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सब कुछ है। बोले एक माने सब हुआ क्या? नहीं, अरे बहुत सारे होंगे यहाँ पर ऐसे। देखना एक सबका मतलब एक, बोले साहब इसकी बहन कौन है? इकलौता बेटा है ना, हमारे डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं सर, इसकी बहन कौन है? बोले ये। अच्छा इसका छोटा भाई कौन है? बोले ये। अच्छा इसका बड़ा भाई कौन? बोले ये। यार तुम क्या जवाब दे दो, तुमको दूसरा जवाब भी आता है क्या? नहीं आता। अरे मेरा तो सब कुछ यही है, यही छोटा है, यही बड़ा है, यही बाबा है और यही बेबी है, सब कुछ यही। सर्वज्ञ माने आत्मज्ञ। और गाथाएं तो कही दी, सबम जान दी एकम जान दी, एकम जान दी सबम जान दी। और उसकी व्याख्या अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका लिखी ना, ये जो शक्ति निकली है, गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, अभी तो अपने तो कहते हैं बोलना चाहिए, कहते थे नहीं बोलना चाहिए, गुरुदेव श्री क्यों? हमारे तो जिंदा है ना गुरुदेव श्री, कौन कहता है गुरुदेव श्री चले गए और उनको गए 32 साल हो गए, कौन कहता? हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव श्री आज भी जिंदा हैं। अच्छा बताओ हमारा उनसे काम क्या था, हमारा उनसे क्या रिलेशन था? क्यों था हमारा उनसे क्या रिलेशन था? हमारे दादा थे, दादी थे, या हमारे क्या थे, चाचा थे, ताऊ थे, क्या थे? यही तो रिलेशन था कि जब भी गुरुदेव श्री का वहां व्याख्यान होता था तो उस सभा के हम भी श्रोता होते थे, वो आज भी गुरुदेव श्री का व्याख्यान होता है और हम आज भी उनके श्रोता हैं, हमारे लिए गुरुदेव श्री कहाँ चले गए बताओ? आज भी है हमारे लिए तो बिल्कुल वैसे ही के वैसे। तब भी हिम्मत नहीं होती थी गुरुदेव श्री से बात करने की, आज भी तुम बात करके बता दो।
रेंज नहीं पकड़ती
है। देखना क्या बात है, गुरुदेव श्री इसको ऐसा कहते थे, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, आत्मदर्शन मई से आत्मज्ञान मई से गुरुदेव श्री इसका व्याख्या जो करते थे तो स्लिप हो गया मेरे को है? नहीं, गुरुदेव श्री की व्याख्या मेरे को बताना है, स्लिप हो गया, अभी फिर बता दूंगा, आ जाएगा वो, जब उसका टेम्पो बनेगा तो आ जाएगा। अभी क्या बताना है, ये सर्वज्ञत्व शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति जो है, इसमें जो ये सामान्य विशेष का अंतर किया ना, सामान्य भाव परिणत इसको कहा, उसको विशेष भाव परिणत कहा, तो इसको सामान्य ये जो शब्द भाव आया है ये दर्शी में से आया है, उदृशी शक्ति में से ये सामान्य भाव अनाकार उपयोगमयी, ये अनाकार शब्द का सब्स्टिट्यूट, अनाकार शब्द का सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पर, सामान्य, वो अनाकार उपयोगमयी था और ये सामान्य भाव परिणत है, वो अनाकार का जो भाव है वही यहाँ सामान्य का भाव है। देखना ये जो अनाकार उपयोगमयी होता है ये उस समय उपयोग, भाई साहब जैसा अभी किसी ने बताया था ना दर्पण, अब हेमचंद जी बता रहे थे दर्पण में जब बहुत सारे चित्र सामने गए झलकते हो तो वो जो है वो साकार है, और जिस समय दर्पण में कोई गे ना झलकता हो, कोई गे ना झलकता हो, उस समय क्या है वो, ये सामान्य भाव परिणत है, वो अनाकार उपयोगमयी है। ऐसा भी क्षण होता है आत्मा में, जब ये आत्मा केवली भगवान के पास में ये वो नहीं है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, केवली भगवान के से हमारे में एक ऑप्शन ज्यादा है, हम भी कुछ है ना, केवली भगवान के पास में ऑप्शन ये नहीं है कि वो एक समय दर्शन उपयोगी नहीं हो जाए, एक समय ज्ञान उपयोग नहीं हो जाए, वो केवल दर्शन केवल ज्ञान उनका युगपत होता है, लेकिन हमारे पास में एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कि जब हम दर्शनोपयोग रूप से परिणत होते हैं तो हम ज्ञानोपयोग रूप से परिणत नहीं होते, जब हम ज्ञानोपयोग रूप से परिणत होते हैं तब हम दर्शनोपयोग रूप से परिणत नहीं होते, उपयोग कह रहा हूं, उपयोग लब्धि की बात नहीं है पंडित जी, उपयोग। देखना इसको मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि वो समय ऐसा होता है, क्या क्या समय, वो समय ऐसा होता है कि मानो वो जो दर्पण है ना, वो दर्पण के सामने जब कोई झलकाने को झलकने को नहीं आता है उतनी देर वो मानो आराम फरमाता है, और अभी कोई आ जाए तो अब उसको तो अपनी ड्यूटी पे लग जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही कोई अब आप आ जाओ गे बन जाओ तो गे बन जाओ तो उसको अपने अब झलकाना पड़ेगा, गेयाकार होना पड़ेगा, गेयाकार भले वो ज्ञान का ही वर्णमन होगा, वो स्वयं ज्ञान का वर्णमन है गेयाकार, वो उसका गेयाकार तो उसके पास है, उसका गेयाकार यहाँ कहाँ आया, यहाँ का गेयाकार तो यहाँ का है, वो ज्ञान की रचना, और वो जो गेयाकार है लेकिन उस रूप से परिणत तो हुआ ना, ये स्वयं हुआ है, उस गेय ने ये वर्णमन नहीं कराया है, ये स्वयं आत्मा उस गेयाकार स्वयं ज्ञान उस गेयाकार रूप परिणत हुआ है, तो ये इसने खुद काम किया है, उसने नहीं किया, ये इसने खुद काम किया है, खुद गेयाकार रूप से परिणत हुआ है। अच्छा देखो अब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, दर्शनोपयोग के समय क्या होता है। सामान्य अनाकार कोई गेयाकार झलकता नहीं है। गेयाकार शब्द ही ज्ञान की तरफ से है। जब ज्ञानोपयोग होगा तो गेयाकार बनेगा ना, और जब दर्शन में है, दर्शनोपयोग में है, वो तो अनाकार उपयोग में ही है। अनाकार है तो कोई कुछ भी चित्र विचित्रता नहीं है उसमें।
उसको दर्शनाकार भी क्यों नहीं कहते?
दर्शनाकार है ना, दर्शनाकार के लिए कौन मना, गेयाकार के लिए मना कर रहे। आप दृश्याकार बोलो, दर्शन का सामने दृश्य है ना,
दृश्याकार।
तो दृश्य कोई विशेष नहीं होता ना, ये अनाकार है एक बात, और ये सामान्य भाव रूप है। इसलिए दृश्य तो आप कहोगे तो दृश्य में तो भेद पड़ जाएगा, दृश्य में भेद पड़ जाए, कौन से दृश्य के आकार, कौन से दृश्य के आकार। अभी कोई दृश्य नहीं है उसके सामने, कोई पिक्चर में नहीं है। एक गे से, मैंने कल आपको बताया था, एक गे से उपयोग हट गया है, दूसरे गे पर गया नहीं है।
सत्ता तो ग्रहण करता है, तो सत्ता सत्ता मजाक की सत्ता ग्रहण करता है, वो कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं। सत्ता मात्र देखता है
कौन,
दर्शन।
हाँ, सत्ता मात्र देखता है ना, तो उसमें कोई आकार बनेगा कैसे, सत्ता का कोई आकार थोड़ी है।
आकार नहीं बनेगा, सॉरी,
ये
इसलिए निराकार,
इसलिए निराकार है, निराकार है। और सत्ता का भी ऐसा भेद नहीं है,
जड़ चेतन का भी भेद,
जड़ चेतन का भेद नहीं है, अस्तित्व का भी भेद नहीं है। मैं ऐसा कहना चाहूँ, अस्तित्व है, वस्तुत्व नहीं, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, अनंत सामान्य गुण, अकेला इसने सिर्फ अस्तित्व गुण को पकड़ा, अस्तित्व को पकड़ा।
सत्ता मात्र देखता है,
ये ऐसा शब्द है शास्त्र का, ऐसा ही शब्द है। उसका भाव क्या, उसका भाव ये है कि जो अनंत गुण है ना, उनका भी सत्ता मात्र पकड़ा। आत्मा का अकेला सत्ता मात्र पकड़ा, अस्तित्व मात्र, आत्मा का भी अस्तित्व मात्र, और आप जितने गुणों को कहो उन गुणों का भी अस्तित्व मात्र, जितनी पर्याय कहो सबकी अस्तित्व मात्र। इसलिए उसमें कोई आकार बना ही नहीं, निराकार उपयोग में। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, एक मेरी भाषा पर थोड़ा सा आप मजा लेना, एक गे से आप अपना उपयोग हटाना, क्या कह करके। आज मोटानी जी बैठे ना, मोटानी जी ने हमको भोजन के लिए बुलाया है, ऐसे बोल रहा हूँ साहब, बुलाया ना भाई साहब। तो मोटानी जी से मैंने कहा कि साहब मोटानी जी मैं आ नहीं सकता आपके पास, आ रहा हूँ पक्का, मैं आ नहीं सकता। तो बोले भाई क्यों नहीं आ रहे हो, तो मैंने इनको बुद्धू बनाया, तो किशोर भाई क्या जाना है मुझे, क्या बोला। मोटानी जी से तो मैंने कहा कि साहब मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता, मेरे को किशोर भाई क्या जाना है, ये मैंने इनको बुद्धू बनाया। बुद्धू क्यों बनाया, क्यों, किशोर भाई ने तो बुलाया नहीं,
भाई भाई,
लेकिन किशोर भाई का नाम लेकर के इनको तो मैंने बुद्धू बनाई दिया ना। तो अब देखना, ये अनाकार उपयोग में क्या हुआ, अनाकार उपयोग में ना मोटानी जी के यहाँ जाना है मुझे, और ना किशोर भाई के यहाँ जाना है मुझे, मुझे तो अपने घर में रहना है। नहीं आया समझ, मजा नहीं आया आपने, आ गया। उछला तो कोई नहीं सकती, उछलती है। ये कह रहा है दर्शन शक्ति उछलती नहीं है। देखना, ये जो है बहुत बहुत बढ़िया है, ज्ञान को ऐसा बुद्धू बनाओ, वो दूसरे एक जगह से उपयोग को हटाओ, ये कहकर कि मुझे दूसरे विषय को जानना है, और ना उसको विषय वहां से तो छोड़ दो और उसमें जाओ मत, ये दर्शनोपयोग में थोड़ी देर रुक जाओ, निर्विकल्प हो जाओगे। निर्विकल्पता की एक विधि ये भी है। चेतन भाई दूसरी बताते, मैं दूसरी बता रहा
हूँ।
सब जीवों को वही, उसको एक्सपांड करो, मैं एक्सपांड करने के लिए कह रहा हूँ, रुक जाओ वहां पर, जाओ नहीं। ये ज्ञानोपयोग साकार है, इसका दूसरा नाम सविकल्प है, दूसरा नाम सविकल्प है, ये विकल्प पैदा करेगा। अभी इसमें अपन स्वच्छत्व शक्ति में आएंगे, उसमें और चर्चा करेंगे इसकी। देखना, तो ये इनने बहुत अच्छा अर्थ बताया अपने रजनी भाई ने, सत्ता मात्र अनाकार उपयोग में, ऐसा हमारे ज्ञान में होता है ऐसा नहीं, वो केवल ज्ञानी परमात्मा के भी केवल दर्शन में ऐसा ही अनाकार उपयोगमयी सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति है। केवल दर्शन के द्वारा बोलो क्या करते, केवल ज्ञान, केवल दर्शन में तो कुछ ज्यादा दम नहीं है। क्यों? केवल ज्ञान में दम है, उसको सविकल्प होना है, उसको सारे पदार्थों के आकारों के आकार रूप परिणत होना है, केवल ज्ञान में दम है। केवल दर्शन में क्या है? सामान्य है, सामान्य नहीं है। इसको भी सारे पदार्थों को विषय बनाना है, लेकिन उन सारे पदार्थों के मात्र सामान्य भाव को विषय बनाना है, विषय इसको छोड़ के। ये लिखा है इसमें, विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें दो विश्व शब्द हैं, दो शब्द आए ना विश्व, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है? नहीं तो आप बोलो साहब ये प्रिंटिंग मिस्टेक, दो बार छप गया विश्व। दो विश्व के दो अर्थ हैं अलग। क्या अर्थ है अलग? विश्व का क्या अर्थ होता है? विश्व का क्या अर्थ होता है? आपको मैं इसकी हिंदी भी बताता हूं, आप हिंदी में लिखा होगा शायद, लिखा है, बता दूं क्या आपको? लिखा है। दो विश्व शब्द के अर्थ हैं। एक विश्व का अर्थ तो जो आपको मालूम है वो है, कौन सा? पूरा लोकालोक, पूरा लोकालोक। बाहुबली से प्रश्न पूछा कि विश्व में अकेला लोक आता है क्या, लोक भी आता है? पर्यायवाची क्या है विश्व का? पर्यायवाची लोक, लोक शब्द को हम विश्व का पर्यायवाची कहते हैं, लेकिन ये लोक में और विश्व में एक ही अंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोक अकेला नहीं है उसका विश्व का अंतर, विश्व में तो अलोक जिसमें शामिल है, अलोक शामिल नहीं है, ये लोक अलोक में शामिल है। क्यों साहब? ये लोक अलोक के साथ है कि अलोक लोक के साथ है? बोले साहब इसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो लोक है ना, ये लोग भारत में, भारत में अपने देवलाली की जरा आइडेंटिटी को आप जरा ये नक्शे को बताना, मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ, आप समझ लो ये भारत का नक्शा है, इसमें जरा देवलाली बताओ कहाँ है। देवलाली की कितनी आइडेंटिटी है? एक पॉइंट बराबर भी नहीं है, पॉइंट बराबर। अच्छा नहीं, आप मुझे ये देख करके बताओ देवलाली में वो पंडित राकेश कुमार आए ना नागपुर वाले, वो कहाँ है जरा बता। अरे देवलाली नहीं दिख रहा, देवलाली नहीं दिख रहा, तो पंडित राकेश कुमार को खोज रहा। क्यों? तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। नहीं तुम्हारी है, लेकिन ये देवलाली की 1,00,000 पॉपुलेशन है, उसमें एक हुआ। ये जो लोक है ना, लोक जैसे ये भारत के नक्शे में देवलाली दिखता नहीं है, ऐसे ये अलोक के नक्शे में ये लोक एक पॉइंट के बराबर नहीं है। एक बूंद, बूंद तो बहुत बड़ी हो गई, अणुमात्र के बराबर नहीं है। टिलटिली वो हमारे किशन चंद जी का शब्द है कि ये पूरे अलोक में ये लोक जो है ना टिलटिली के बराबर है। वैसे टिलटिली है ना ऐसा, कोई कोई तारा चमकता है ना,
जुगनू
जुगनू जुगनू, पूरे लोक में एक जुगनू के बराबर, जुगनू की चमक के बराबर पूरे आलोक में ये लोक की इतनी बड़ी हैसियत है जिसमें पूरे छाव द्रव्य रहते हैं। बोलो इतना बड़ा, इसलिए लोक आलोक का बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन अब उसमें क्योंकि छह द्रव्य का कोई विशेष रूप से वर्णमन नहीं है, केवल आकाश का वर्णमन है, पूरा केवल आकाश है और उसका वर्णमन है, इसलिए जो है उसको हम सस्ते में निपटा देते हैं आलोक। इतना बड़ा आलोक और बस इतना कह करके, ये लोक के अलावा जो है ना वो सब आलोक है जिसमें कुछ नहीं है, आकाश के अलावा जिसमें कुछ नहीं है, ऐसा आलोक को हम ऐसा कहने में ज्ञान में हमने निपटा दिया, लेकिन उसकी जो सत्ता है वो बहुत विशाल है। तो ये जो है ना, इसमें जो दूसरा विश्व शब्द है उसका अर्थ है लोकालोक। पहले विश्व का क्या हुआ? पर्यायवाची है, पर्यायवाची विश्व शब्द के जो पर्यायवाची है उसमें एक विश्व शब्द का पर्यायवाची है समस्त, सर्व। क्या बोला? सर्व माने सर्व का पर्यायवाची है विश्व। तो इसमें ये कह रहे हैं विश्व, विश्व सामान्य भाव माने पहले विश्व का अर्थ है समस्त। अब इसमें देख लो, जिस शक्ति के कारण विश्व माने समस्त, दूसरे विश्व माने विश्व के, माने समस्त विश्व के सामान्य भाव से परिणमित आत्मदर्शन मई ये सर्वदर्शित्व शक्ति है। क्या बात है, वो तुम्हारे को सर्वदर्शित्व शक्ति आपको दी गई, आपने उसका क्या उपयोग किया? कर लिया हमने उपयोग। बोले क्या उपयोग किया? पूरे लोकालोक को हमने सामान्य भाव से देख लिया, सारे लोकालोक को सामान्य भाव से देख लिया। ऐसे कैसे देख लिया? तुम तो ध्यान में बैठे थे। बोले हाँ, हमने ध्यान में ही सारे लोकालोक को देखा है, तुम तो यहां से निकले ही नहीं, निकलने की क्या जरूरत है? फिर वो सर्वदर्शित्व तुम कैसे बोलते हो कि सर्वदर्शित्व पना तुमने ये सामायिक में बैठे बैठे देख लिया? अरे ये सर्वदर्शित्व पना आत्मदर्शन में ही है ना, इसलिए मैंने सामायिक में बैठे बैठे आत्मदर्शन किया, माने सर्वदर्शी हो गया, आत्मदर्शन में ही है। इसको पूरे लोकालोक में जाना ही नहीं पड़ता, ये लोकालोक को गरज हो तो ये ज्ञान में आए, इसके दर्शन में आए, लोकालोक को झलकना हो तो वो आए इस ज्ञान में। ये ज्ञान अपने उपयोग को, ज्ञान मतलब अभी अपन दर्शी की बात कर रहे हैं, दर्शन अपने उपयोग को ये सारे लोकालोक में फैलाता नहीं है, ये तो बस अपने सर्वदर्शी स्वभाव को देख लेता है। अपने सर्वदर्शी स्वभाव को देखता है तो उसमें पूरा लोकालोक दिखाई देता है, कहीं जाना आना नहीं पड़ता। ऐसे ही ज्ञान का है वो आत्मज्ञान में ही है, ऐसे ही दर्शन का है वो सर्वदर्शी में ही है, वो आत्म दर्शन में ही है। आत्मा का दर्शन माने सर्व का दर्शन, आत्मा का ज्ञान माने सर्व का ज्ञान। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा का ज्ञान माने सर्व का ज्ञान कैसे हो सकता है? आत्मा का ज्ञान माने सर्व का ज्ञान क्यों? और इसको सूक्ष्मता में जाना, आपने आत्मा को देखा, बहुत आत्मा तो बहुत बड़ा है, आत्मा की अकेले ज्ञान को देखा, अरे ज्ञान तो बहुत बड़ा है, उसके केवल ज्ञान को देखा, आत्मा के केवल ज्ञान को देखा, ये अनंत सिद्धों के केवल ज्ञान उसमें झलक रहे थे। क्या? मेरे केवल ज्ञान में। तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा केवल ज्ञान? रमणीक भाई बोलो, कह सकता हूँ कि नहीं मेरे केवल ज्ञान में? वो भविष्य में जो पर्याय होने वाली है वो भी मेरी है क्या? नहीं तो फिर मैं क्यों नहीं कहूंगा मेरी? मेरे केवल ज्ञान में पूरे लोग, पूरे सिद्ध, अनंत सिद्ध, तब तक तो और भी बहुत सारे सिद्ध हो जाएंगे जब मेरे को केवल ज्ञान होगा, तब तक और भी जुड़ जाएंगे ना केवल ज्ञानी, उन सबका केवल ज्ञान झलक रहा और उन सबके केवल ज्ञान में सबका केवल ज्ञान झलक रहा। इसके बीच में कितना है? केवल ज्ञान झलक रहा, अभी तो केवल ज्ञान में क्या झलक रहा वो नहीं बता रहा, केवल ज्ञान में अनंत केवल ज्ञान झलक रहे और उन अनंत केवल ज्ञानों में एक एक केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक झलक रहा है। मुझे क्यों किसी के पास जाने की जरूरत है? मुझे क्यों कहीं बाहर देखने की जरूरत है? ये तो आत्मा दर्शन करूं ना, आत्मदर्शन मई सर्वदर्शित्व शक्ति है, आत्मज्ञान मई ये सर्वज्ञत्व शक्ति है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शन मई सर्वदर्शित्व शक्ति, विश्व विश्व ओम सर्वदर्शित्व शक्ति नमः। ये शक्तियों के सूत्र बनाओ ये 47 और उसकी एक एक माला फेरो, इसके एक एक सूत्र की माला फेरो। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ओम आपको माला फेरनी है। आप नमोकार मंत्र की माला फेरते हो ना, आज आपको एक माला फेरनी है, जीवत्व शक्ति की माला फेरनी है। क्या है जीवत्व शक्ति की माला? आत्मद्रव्य हेतुभूत क्या है? चैतन्य भाव मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, बस इसकी माला फेरना। आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, आत्मद्रव्य हेतुभूत जीवत्व मात्र जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति जीवत्व। और यदि भूल जाओ तो जीवत्व शक्ति जीवत्व शक्ति जीवत्व शक्ति जीवत्व शक्ति ऐसा करते रहे। किताब खोल के नहीं देखना, सो जाएंगे। और इतनी बढ़िया सुखी नींद आज तक नहीं आई होगी। यदि सो भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान रखना जितना छूटा हो जाग करके कर लेना। ये सर्वदर्शित्व शक्ति, इसका दूसरा रूप जो है वो स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति के। ये सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति के जो रूप हैं, वो सर्वदर्शित्व स्वच्छत्व शक्ति में और प्रकाश शक्ति में, ऐसी 12 शक्तियों तक के ये ज्ञान के रूप चल रहे हैं। अभी अपना समय पूरा हो गया है, अब अपन स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा और प्रकाश शक्ति की चर्चा कल करेंगे।